ओम शांति। हमारे मध्य आज उपस्थित है हमारे आदरणीय गीता दीदी जी, और आप सभी दो और पिछले शायद कोई तीन दिनों से इस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के इस ज्ञान सरोवर के कैंपस में हम बहुत सुंदर जो सेशन चल रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये परमात्म ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो आज हम दीदी से सुनेंगे कि इस यज्ञ की अर्थात ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री इतिहास कब से ये स्थापन हुआ। तो दीदी विस्तृत रीति से आपको ये बातें सुनाएंगे। आदरणीय गीता दीदी जी, ओम शांति।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आकर अगर आप पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी न जाने तो ये योग्य नहीं रहेगा। इसलिए अभी टाइम भी हो गया है, फिर भी ये सत्र रखा है ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे, क्या थे और उनका रोल क्या है। हम सभी अपने अपने शारीरिक पिता, जिसको लौकिक पिता हम कहते हैं, जो शरीर को जन्म देते हैं, उनको हरेक जानते हैं। वो पारलौकिक पिता परमात्मा, जिनको हम ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं, उस पिता परमात्मा का भी सही परिचय आपको कल शाम के सत्र में राधिका बहन जी के द्वारा मिला। अब उस पिता परमात्मा को भी आपने जान लिया, पहचान लिया कि परमात्मा एक ही है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसलिए उनका दिव्य रूप ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है और आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शरीरधारी जो भी मनुष्यात्माएं हैं वो महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, तो उस पिता का भी सही परिचय आप सबने प्राप्त कर लिया और अब आप प्राप्त करने जा रहे हैं हम सर्व मनुष्य आत्माओं के आदि पिता, अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का परिचय। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, ये हम भक्ति में भी मानते रहे हैं। तो कैसे किया सृष्टि का सर्जन? माना कोई पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, कोई मानव शरीर, मकान दुकान बनाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो है ही निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, वो कोई भौतिक सर्जन नहीं करते हैं। एक और लेसन आपका आगे चलेगा वर्ल्ड साइकिल के बारे में, उसमें भी आप समझेंगे कि संसार का खेल पुरुष और प्रकृति का बना है। पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा, वो भी अनादि अविनाशी है। प्रकृति माना पांच तत्व, वो भी अनादि अविनाशी है। इसलिए कोई स्थूल उत्पत्ति की बात नहीं है। तो इस विद्यालय के इतिहास और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से आप समझ सकेंगे कि परमात्मा कैसे नई दुनिया बनाते हैं। ये भी आपने समझा है कि परमात्मा कलयुग के अंत समय, अति धर्म ग्लानी के समय सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अति धर्म ग्लानी का समय कलयुग अंत को ही हम कहेंगे। इसलिए आप सबको यहां बुलाकर हमें यही परमात्मा का संदेश देना है कि वर्तमान समय ही अति धर्म ग्लानी का समय है। जब हम सभी मनुष्य आत्माएं पतित तमोप्रधान बन जाती हैं और ऐसे अति धर्म ग्लानी के समय कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। यही कारण है भक्ति में शिव के अवतरण को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो रात्रि माना कोई 12 घंटे की रात्रि नहीं, और कोई 12 घंटे की रात्रि जागने से कोई जीवन जागृत नहीं हो जाता है। ये है कलयुग अंत, घोर अज्ञान अंधकार का समय, जब हर मनुष्य आत्मा अपने आप को, अपने असली पिता परमात्मा को, अपने असली धर्म कर्म को भूल गई है। और तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। द्वापर युग से लेकर अनेक धर्मात्माएं आए, अनेक महात्माएं आए और हरेक ने संसार को सुखी बनाने का प्रयास किया, हरेक ने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की, थोड़े समय के लिए थोड़े समाज को वे बदल सके, लेकिन आखिरी परिणाम आज हम देख रहे हैं कि सृष्टि और पतितमो प्रधान बन गई है। अब जब अनेक धर्मात्मा महात्माओं के द्वारा विश्व कल्याण टोटली नहीं हुआ, हरेक ने अपने अपने धर्म की स्थापना की, अपना अपना चिंतन बताया, कुल मिलाकर सत्य तो मिलाई ही नहीं, अनेक मतें हो गई। इसलिए ये वो ही अति धर्म ग्लानि का, अधर्म की अति वृद्धि का समय है, जिसको कोई कयामत का समय कहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन डे कहते हैं, कोई डूम्स डे कहते हैं। ये वो ही समय है, और उस समय परमात्मा कैसे आते, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसलिए वो कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वे कलयुग के अंत की सभी साधारण आत्माओं में से उनको जो योग्य लगता है, उस साधारण मानव तन में दिव्य प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं, और उनके मुख द्वारा हमें अनेक जन्मों की भक्ति भावना का फल सत्य ज्ञान देते हैं। जिस मानव तन को वो अपना माध्यम बनाते हैं, उस साधारण मानव तन को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे आज से 55 वर्ष पूर्व मैं गीता बहन थी, इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग को अपनाने के बाद अब मैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन हूं। ऐसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा इस विश्वविद्यालय के फाउंडर मीडियम हैं। क्योंकि अधिकतर बहनें, माताएं, कन्याएं इस यज्ञ में समर्पित हुए, इसलिए उन्हों की प्रैक्टिकल संभाल, संचालन और आध्यात्मिक पालना के लिए जो प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी वो मातेश्वरी जगदम्बा, जिसका नाम ओम राधे था। तो ये अलौकिक माता पिता है समस्त मानव जाति के, जिन्होंने परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर और उनके सत्य ज्ञान से स्वयं आदर्श बनकर हम सबकी पालना की और हमें भी ऐसा दिव्य बनाने का पुरुषार्थ किया। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था, सभी उनको लखीराज बाबू कहकर पुकारते थे। 1876 में 15 दिसंबर को कृपलानी परिवार में उनका शारीरिक जन्म हुआ। उनके पिताजी स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, परंतु परमात्मा को इनको माध्यम बनाना होगा। वे अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ से उस जमाने में प्रसिद्ध जौहरी बने। उनका उदयपुर नेपाल आदि अनेक राजा महाराजाओं के साथ संबंध थे और उस समय जो अंग्रेजों का राज्य था तो बड़े बड़े वाइसरॉय और अंग्रेज अधिकारियों के साथ भी उनका संबंध इस ज्वेलरी के हिसाब से रहा। परंतु बाबा बहुत ही सात्विक थे, भल सिंधी थे परंतु वैष्णव आहार विहार उनके जीवन में था, इसलिए वे बड़े बड़े राजा महाराजाओं और अंग्रेज ऑफिसरों को पार्टी देते थे, पर उनकी पार्टी में सात्विक शाकाहारी भोजन होता था और कोई मांसाहार या शराब आदि का उसमें प्रबंध नहीं होता था। राजा महाराजाएं कहते भी थे कि लखीराज बाबू आपकी पार्टी तो फीकी रही, परंतु बाबा कहते थे कि मैं तो आपको हीरे मोती देता हूं, उसके रिटर्न में आप तो मुझे कागज के नोट देते हैं, इसके कारण मैं कोई अपने जीवन की ऊंची धारणाएं तोड़ूंगा नहीं। तो वो अपनी रीति से बहुत अच्छी शाकाहारी भोजन की ही पार्टी देते थे। बाबा में बहुत ही अनन्य भक्ति भाव था और उनके जीवन में बहुत संयम नियम था। वे श्री नारायण के उपासक थे, गीता के नित्य पाठी थे, बहुत धनी होते हुए भी बहुत ही दानी थे और उनका सात्विक आहार विहार जीवन में रहता था। उनको शुरू से ईश्वर की तलाश थी, जिसके कारण उन्होंने 12 से भी अधिक गुरु किए और गुरुओं के प्रति उनकी बहुत अटूट श्रद्धा भावना रहती थी, इसलिए गुरु का बुलावा कभी भी होता था वे अपने घर के कोई भी प्रसंग छोड़कर गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। एक बार घर में अपने ही बच्चे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और अचानक गुरु जी का बुलावा हुआ, वो प्रोग्राम आधा छोड़ करके चले, तो ये उनका गुरु जी के प्रति भी अनन्य समर्पण और श्रद्धा भावना थी। भक्ति की इतनी पराकाष्ठा थी, इतने धनाढ्य होते हुए भी अपनी एक बेटी की शादी उन्होंने एक योगी राज से की थी और दूसरी बेटी को भी दहेज में चांदी का मंदिर भेंट किया था। मतलब इतना धन साधन होते हुए उनका ये लक्ष्य और प्रैक्टिकल धारणा रहती थी कि बच्चों में भी ये संस्कार आवे। आप पांडव भवन जाएंगे, वहां आर्ट गैलरी है ओम शांति भवन में, ये सारे चित्र वहां बने हुए हैं। बाबा का लौकिक परिवार बताया है, उनको 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और इस प्रकार से भक्ति भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे और बहुत अच्छी तरह अपना बिजनेस भी चलाते थे। 1936 में बाबा बॉम्बे में अपने एक मित्र के घर बबुलनाथ के पास गए थे। उस समय 1936 में उनको सर्वप्रथम विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था और ये आदेश मिला था कि अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम्, तुमको भी ऐसा बनना है। बाबा तो इस संदेश को कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद एक बार जब वे सिंध हैदराबाद से कलकत्ता जा रहे थे, क्योंकि बाबा की एक ज्वेलरी की गद्दी कलकत्ता में भी थी, तो बीच में वाराणसी में अपने मित्र के घर गए और अपने नित्य क्रम अनुसार जल्दी उठकर बगीचे में बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे, तो उनको ये साक्षात्कार हुए, ज्योतिर्लिंगम का दर्शन हुआ और दूसरा महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने साक्षात्कार में ये देखा कि कैसे भविष्य में इस कलियुगी दुनिया का प्राकृतिक आपदाओं से, ग्रह युद्ध से, और तीसरा उन्होंने देखा कि कैसे आसमान से अग्नि के गोले बरसे और सब भस्मीभूत हो गया। उस समय तो एटम बॉम्ब नहीं बना था, लेकिन 1936 में साक्षात्कार में बाबा ने देखा कि कैसे अणु शस्त्रों से ये महाविनाश का कार्य होगा। बाबा वाराणसी से कलकत्ता आए, इस साक्षात्कार को देखकर इतना बाबा का निश्चय हो गया और ईश्वर के प्रति इतनी समर्पणता बढ़ गई कि कलकत्ता आकर उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे अब ये बिजनेस नहीं करना है। ये मुझे क्या साक्षात्कार हो रहा है, क्या प्रभु संदेश मिल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे शांति से बैठकर चिंतन करना होगा। तो उन्होंने अपने पार्टनर को कहा कि भाई अब मैं बिजनेस करना नहीं चाहता हूँ, आप हिसाब करो और हिसाब से जो मेरा निकलता हो वो हिस्सा मुझे दे दो, मैं वापस हैदराबाद जाना चाहता। उनके पार्टनर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जानते थे सारा बिजनेस का आधार बाबा की प्रतिभा थी, बाबा का व्यक्तित्व था, परंतु बाबा को तो ईश्वर का संकेत मिल गया, इसलिए वो तो समेट कर वापस हैदराबाद जाना चाहते थे। तो अपना जो हिस्सा मिला लेकर बाबा कोलकाता से हैदराबाद आए। उस समय बाबा का जो चाचा थे मूलचंद जी, वो बहुत सीरियस थे, लास्ट मोमेंट पर थे। बाबा उनके पास गए, वहां भी उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि कैसे चमकता ज्योति बिंदु आत्मा सितारा मस्तक से निकल अंगूठे तक उनके लाइट की किरणें गई और फिर समेट कर फिर कैसे आत्मा निकल गई। उस समय बाबा को ये आत्मा का साक्षात्कार हुआ। फिर उनको और भी अनेक साक्षात्कार हुए, श्री विष्णु जी का, श्री कृष्ण का, श्रीनाथ जी का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि बाबा श्री नारायण के उपासक थे, वैष्णव थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना के फल स्वरूप ये साक्षात्कार उनको हुए। इस प्रकार साक्षात्कार के माध्यम से जो संकेत मिले उसके आधार पर इतना निश्चय और समर्पण कि बाबा ने अपना लौकिक बिजनेस समेट लिया। उन्हीं दिनों में एक बार गुरुजी उनके घर आए थे और सत्संग चल रहा था। बाबा के जीवन की ये धारणा थी कि चलते चल रहे सत्संग के बीच कभी भी बाबा उठते नहीं थे, परंतु उस समय बाबा को कोई अलौकिक अनुभूतियां हो रही थी, तो बाबा सत्संग के उठकर अपने कमरे में गए। ये देखकर पीछे पीछे बाबा की पुत्रवधू, जिसका नाम लौकिक राधिका था, तो वो उनके पीछे पीछे गए, क्योंकि उनको आश्चर्य लगा कि आज तक बाबा कभी नहीं उठे और आज कैसे बाबा उठ के गए। जब पीछे पीछे जाकर देखा तो बाबा कमरे में अपने बेड पर बैठे थे और एकदम ध्यान अवस्था में थे। पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था और बाबा के मुख से ये उच्चारण हो रहा था, बिल्कुल विस्परिंग वॉइस में, साइलेंस वॉइस में, कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये शब्द उच्चारण हुए, माना स्वयं ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर खुद अपना परिचय दिया कि मैं ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, कल्याणकारी शिव स्वरूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तो ये वो क्षण था जब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। उसके साथ साथ बाबा को ये भी साक्षात्कार हुआ कि ऊपर ज्योति बिंदु सितारे थे और एक एक सितारे धरती पर आकर कोई राजकुमार राजकुमारी बन रहे थे और स्वर्ग का नजारा उनको दिखाया। बाबा ने फिर बताया कोई लाइट थी, कोई माइट थी, परंतु क्या था पूरा बाबा को स्पष्टता नहीं थी, क्योंकि ये सारे साक्षात्कार हो रहे थे। फिर तो बाबा ने अपने ही घर में, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा बंगला था, उसमें ही बाबा ने अपने परिवार के साथ सत्संग शुरू कर दिया और आत्मा का पाठ पक्का कराया। खुद भी अपने आप को आत्मा का पाठ पक्का कराते थे। बाबा की जो डायरियां मिली, तो ये भी एक डायरी थी जिसमें बाबा लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है। बाबा की धर्म पत्नी का नाम जसोदा था, तो बाबा देहभान से ऊपर उठकर आत्मभान में स्थित होने के लिए ये अभ्यास करने लगे। नारायण आत्मा है, बाबा ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो बाबा पक्का करते थे कि नारायण भी एक आत्मा है, राधिका भी एक आत्मा है, जो बाबा की पुत्रवधु का नाम था। इस प्रकार से गीता का अध्ययन तो था ही, और आप सबको पता है गीता के दूसरे अध्याय में ही जो पूरा आत्मा का ज्ञान दिया गया है, तो बाबा उसके आधार पर ये अभ्यास करके अपनी आत्मा स्थिति बनाने का प्रयास करने लगे। चारों ओर सिंध में घर बैठे अनेक माताओं कन्याओं को भी साक्षात्कार होने लगे और ये संकेत दिया गया कि इनके पास जाओ, दादा लेखराज के पास जाओ, सत्संग करो। तो बाबा ने अपने भवन में ही सत्संग की शुरुआत की, अनेक माताएं कन्याएं उसमें आने लगे। उस समय ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, केवल साक्षात्कार के आधार से जो थोड़ा बहुत समझ में आया तो ओम की धुनी लगाते थे, रोज बाबा ओम की धुनी करवाते थे। और इसको देखते हुए लोग फिर इसको कहने लगे, ओम मंडली नाम पड़ा। ओम मंडली में जाते हैं, ओम मंडली सत्संग में जाते हैं, ओम की धुनी करते हैं। ऐसे चारों ओर ये संदेश फैल गया, साक्षात्कार भी होने लगे और कई माताएं कन्याएं आने लगे, बहुत दिव्य अनुभव करने लगे। सिंधी समाज में बहुत सुधार होने लगा। जो जो सत्संग में आते थे उनके अशुद्ध आहार, फैशन और गलत रस्मों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि यहाँ आकर जो उनको ज्ञान मिलता था या अनुभूतियां होती थी, इससे उनके जीवन और सात्विक बनने लगे। आप जानते हैं सिंध हैदराबाद, उस समय तो भारत अखंड था, बाद में ये पाकिस्तान बना ना, तो वहां भी सिंधियों के आहार विहार भी अशुद्ध थे। तो यहाँ आने के बाद उन माताओं बहनों के उन परिवारों के आहार विहार भी शुद्ध होने लगे, एक दो के सादा जीवन होने लगा, एक दो से व्यवहार, एक मैनर्स भी बहुत अच्छे, शांति के, प्रेम के, नम्रता के आने लगे। उसी माताओं कन्याओं में ओम राधे नाम की कन्या 19 वर्ष की, बाबा 60 वर्ष के। देखो 1876 में बाबा का जन्म और 1936 में ये सब शुरू हुआ, तो बाबा उस समय 60 वर्ष के थे। तो आप सोचिए 60 वर्ष की आयु पर जब हम रिटायर्ड होने लगते हैं, बाबा ने ये एक नया अभियान शुरू किया, नया सत्संग शुरू किया। तो मम्मा उस सत्संग में आने लगी। आते ही बाबा ने परख लिया, बहुत ही तेजस्वी थी, अपनी लौकिक पढ़ाई में भी बहुत तेजस्वी थी, गीत संगीत की भी बहुत सुंदर कला उनमें थी। तो बाबा ने ओम राधे को सत्संग की जिम्मेवारी दी और बाबा अपने लौकिक परिवार सहित कश्मीर चले गए, ताकि वहां शांत एकांत कुदरती वातावरण में वो सोचें, इन संकेतों पर विचार करें, अच्छी तरह से और अनुभूतियां करने के लिए बाबा कश्मीर गए। कश्मीर से बाबा रोज अपनी अलौकिक अनुभूतियों के पत्र लिखते थे, मार्गदर्शन देते थे, और इधर मम्मा सत्संग में रोज बाबा का पत्र सुनाती थी और उस सत्संग की वृद्धि होती जाती थी। ये बाबा का मकान हैदराबाद में था, उसमें पहले उन्होंने सत्संग शुरू किया। मम्मा बहुत अच्छा सितार बजाती थी, ये चित्र बताया। फिर कैसे बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया, क्योंकि भगवान का आदेश था कि ये जो सारा आध्यात्मिक क्रांति का कार्य है माताओं और बहनों के द्वारा कराना है। तो बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया। अक्टूबर 1937 में बाबा ने भगवान के आदेश पर, कोई तो अपना सर्वस्व समर्पण करेगा ना, तब तो ये ज्ञान यज्ञ रचा जाए, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आदेश दिया और ब्रह्मा बाबा ने अक्टूबर 1937 में अपनी चल अचल सारी संपत्ति परमात्मा को समर्पण की और शिव बाबा के आदेश अनुसार 7 कन्याओं माताओं के नाम का ट्रस्ट बनाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी विश्व सेवा के लिए, इस ज्ञान यज्ञ के संचालन के लिए समर्पित की। बाबा अपने परिवार सहित, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार भी इतना सात्विक, अभी लास्ट एक बेटी उनकी है बॉम्बे में, वो भी काफी अभी एज हो गई और बीमारी की स्थिति में रहती हैं, परंतु दोनों बेटे, तीनों बेटियां और पुत्र वधु, पूरा परिवार इस यज्ञ में समर्पित हो गया, जैसे और माताएं बहनें भी समर्पित हुई। बाबा की तरह और भी कई हमारी दादियों के पूरे माँ बाप परिवार सहित समर्पित हुए और उन्होंने भी अपना पूरा आर्थिक सहयोग दिया। अब जो माताएं बहनें ओम मंडली में समर्पित होना चाहे, शुरू से बाबा ने ये नियम रखा था जो आज तक भी है। आज हम 21,000 से अधिक बहनें, कुछ 3,000-4,000 भाई समर्पित है। हमें यहाँ समर्पित तभी करते हैं जब हमारे लौकिक माता पिता या हमारा जो जवाबदार है वो हमें अपना सम्मति पत्र लिख कर दे, तभी यहाँ रखा जाता है। ऐसे ही कोई घर से भाग कर यहाँ आके रह नहीं सकता है। अभी भी यहाँ कोई भी कहीं गुम हो जाता है परिवार में, तो उनके परिवार वाले यहाँ ढूंढने आते हैं कि आप लोगों ने तो नहीं रख लिया है ना। परंतु शुरू से विद्यालय ने नियम से कार्य किया कि अपने माता पिता का सम्मति पत्र लेकर जो आएंगे उनको ही यहाँ समर्पित किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर यज्ञ में समर्पित हुई। उस समय लगभग 400 भाई बहनों में लगभग 350 माताएं, कन्याएं और बच्चे थे। कुछ परिवार, कुछ भाई और कुछ थोड़े कुमार भी थे। प्रारंभ में इतने समर्पित हुए थे। आज इतने वर्षों की सेवा के बाद मैं बताऊं कि अब केवल हमारी एक दादी बची हुई है जो शांतिवन में है, दादी रत्ना मोहिनी जी, जो अभी इस विद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। शुरू के 400 में से एक दादी अभी। तो इस प्रकार से जो माताएं छोटे बच्चों को लेकर आए, जैसे अभी जो हमारी दादी रतन मोहिनी है, उनकी माँ 12 वर्ष की आयु में उनको लेकर के आई थी। हमारी दादी गुलजार जी 9 वर्ष की आयु में आई थी माँ के साथ। हमारी इशु दादी जो इस विद्यालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालती थी वो 8 वर्ष की आयु में आई थी। तो इस प्रकार जो माताएं आई, कईयों के साथ बच्चे आए, तो बाबा ने उनकी लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का प्रबंध करने के लिए बोर्डिंग स्कूल शुरू की। उनको लौकिक विद्या भी, जो बड़ी कुमारियां आई, बड़ी माताएं आई, जिनको थोड़ा पढ़ाना लिखाना आता था, वो ही उनको लौकिक विद्या पढ़ाई और साथ साथ इस ज्ञान योग की, रूहानी प्यार की सारी शिक्षाएं भी बच्चों को दी जाने लगी। तो जब इस प्रकार से काफी माताएं, बहनें, परिवार, भाई इसमें समर्पित हुए, तो सिंध हैदराबाद में खलबली मची गई और लोगों के तरफ से, क्योंकि उनके परिवारों में से ही आई, तो काफी विद्यालय की ग्लानी होने लगी। माताओं बहनों को कष्ट दिए जाने लगे, लोकलाज, भय, निंदा की परीक्षा इन माताओं बहनों के सामने आई। शुरू में तो बहुत अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन हुआ, आहार विहार शुद्ध हुए, उनके व्यवहार अच्छे हुए, तो लोग खुश थे। तो आई वो माताएं, बहनें, परिवार, परंतु फिर जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो लोग फिर काफी ग्लानी करने लगे और विघ्न डालने लगे। ये था बाबा का भतीजा, विश्व किशोर भाऊ उसका नाम था, जो बिल्कुल बाबा का राइट हैंड बनकर चला। ये और 2 कुमार छोटी आयु में यज्ञ में समर्पित हुए थे। यहाँ माउंट आबू में भी वे आए पहुंचे, जो विश्व रतन दादा सफेद बाल वाले हैं चित्र में, वो पूरा फिर इशु दादी के साथ यज्ञ का फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते थे। और दूसरे जो थे वो दादा चंद्रहास, जो पूरा माउंट आबू में आकर कंस्ट्रक्शन का सारा कारोबार संभालते थे। ये बोर्डिंग स्कूल का फोटो है, बाबा खड़े हैं, और इस तरफ दूसरे विभाग में जो खड़ी है वो हमारी दादी चंद्रमणि, युवा आयु में पढ़ाने का वहां कार्य करती थी। बाबा ने सबका यूनिफॉर्म भी रखा। उस जमाने में ये यूनिफॉर्म पहनाया, जब माताएं कन्याएं 4 दीवारों के बीच में होती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय बाबा ने ये ड्रेस पहनाया, ताकि जो स्त्री भान है, स्त्रीपन का भान निकल जाए और शक्तिशाली बन जाए। तो इसलिए बाबा ने ये ड्रेस पहनाया था। बाबा बोर्डिंग के बच्चों को और सबको लेकर के क्लिफ्टन पर जाते थे और उनको घुमाते थे, वहां समुद्र किनारे भी योग का अभ्यास कराते थे, ओम की धुनी बुलवाते थे। ये बोर्डिंग की बहनों का फोटो है। फिर तो जब इन माताओं कन्याओं के माँ बाप, उनके परिवार जनों ने जब इन्होंने देखा कि ये तो अपने पवित्र योगी जीवन के लिए दृढ़ संकल्प बन गई हैं, तो उनको पवित्रता के नाम पर बहुत सीतम सहन करने पड़े, बहुत अत्याचार होने लगे। हैदराबाद में विरोधियों ने 1938 में, अभी तो 2 ही वर्ष हुआ था, और दूसरे वर्ष ही जिस लखीराज भवन में बाबा इन सब के साथ रहते थे, विरोधियों ने उनको आग लगा दी। पर ये ईश्वर का कार्य है, जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार के वो बट्टे में आग लगाते थे, उसमें बिल्ली के बच्चे थे, परंतु वो सेफ रह गए, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। तो जैसे ही आग लगाई, पता चल गया ये सारे के सारे निकल गए और बाबा ओम निवास में स्थानांतरित हो गए। ये भी बाबा का दूसरा बंगला था, एक का नाम जसोदा निवास था जिसमें शुरू हुआ, उसको आग लगा दी तो ये ओम निवास में स्थानांतरित हुए। वहां भी इनके ही मित्र संबंधियों ने, जो माताएं कन्याएं कुमार समर्पित हुए थे, उनके ही मित्र संबंधियों और समाज वालों ने वहां भी पिकेटिंग की धरना प्रदर्शन किया। तो फिर बाबा ने ईश्वरीय आदेश अनुसार पूरी सत्संग मंडली को लेकर के कराची में बाबा शिफ्ट हो गए। वहां कई बंगले लिए गए और वहां फिर सत्संग चलने लगा। वहां भी विरोधियों ने आकर पिकेटिंग धरना प्रदर्शन किया। कई माताएं कन्याएं बंधन तोड़कर हैदराबाद से फिर वापस कराची भी पहुंच गई, क्योंकि कईयों के माँ बाप ने और परिवार वालों ने जबरदस्ती से उनको खींच कर अत्याचार दे करके वापस घर ले गए थे, परंतु उनकी परमात्मा से इतनी लगन लग चुकी थी कि वो लोग वापस हैदराबाद से कराची पहुंच गए। उसमें भी जो छोटी आयु की कुमारियां थी, उनको फिर से उनके मित्र संबंधी कराची में आकर के वापस घर ले गए। उन पर बहुत सितम गुजारे गए, भूखे रखा गया, एक कमरे में 8-10 दिन बांध करके रखा गया। वहां भी एंटी ओम मंडली के द्वारा फिर से सख्त विरोध हुआ। तो शुरुआत में देखो, कोई भी शुभ कार्य में विघ्न आते ही है, इस प्रकार से काफी विघ्न आए। बड़े बड़े सिंधियों ने फिर शासनकर्ता उस जमाने के जो थे उन पर प्रेशर डाला, माताओं कन्याओं पर, इस संस्था पर काफी दबाव आया, अत्याचार हुआ, अखबारों में भी भड़काने वाले लेख छपे कि ये तो सबको भगा के ले गए हैं, इस प्रकार की काफी बातें ऐसी लिखी गई। शरारती लोग जो थे, कन्याएं माताएं जो आते थे सत्संग में, उन पर उनको अपमान करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कराची में जब गए तो कहा कि बाबा अपने परिवार सहित अलग रहे, और सत्संग में जो माताएं आई है कन्याएं आई है वो अलग रहे, इस प्रकार से अलग कर दिया गया। परंतु मम्मा थी काफी हमारी, जो दादियां उस समय युवा हो चुकी थी, उन सब ने माताओं कन्याओं को संभाला। बाबा का रोज पत्र आता था, उसके आधार पर कार्य चल रहा था। कईयों ने कोर्ट में केस भी किए कि हमारी पत्नियां चली गई हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, हमें फिर से वो वासना का अधिकार दिया जाए। मम्मा कोर्ट में गई, जो रियलिटी थी वो बताई गई। कोई विद्यालय ने कोई माताओं को कन्याओं को भगाया नहीं था, लेकिन उनके पतियों द्वारा परिवार द्वारा इतना सितम गुजारा जाता था, इसलिए वो घर से भागकर संस्था में आए थे। तो सारी सत्य हकीकत वहां बताई गई। एक 17 वर्ष की माता आई थी, उनके पति ने झूठा केस दाखिल किया कि वो 17 वर्ष की, एक 70 वर्ष की माता थी, और कहा कि 17 वर्ष की है और इनको भगाया गया। तो मम्मा ने जाकर के कोर्ट में सारा जज को जवाब दिया, सारी सत्यता बताई, और आखिर सत्यता पवित्रता का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो विजयी हुई और कराची में फिर शांति से सत्संग चलता रहा। 14 वर्ष कराची में ये कारोबार चला, और ज्ञान योग धारणा और सेवा जो इस विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट हैं, उनकी पूरी सघन प्रशिक्षण दिया गया, और आध्यात्मिक रूप से इन समर्पित भाई बहनों को परिपक्व बनाया गया। 1950 में देखो, 24 मार्च 39 में विरोधियों ने फिर से सिंधियों के जो गुरु थे साधु वाशवानी को लेकर फिर पिकेटिंग की, फिर पुलिस को बुलाया गया, और वासवानी जी तथा जो भी पिकेटिंग में थे गवर्नमेंट ने उन सबको जेल में डाला। उस समय के मुख्यमंत्री विधि मंत्री पर बहुत ही प्रेशर लाया गया, तो सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बिठाई और उनके आगे निर्णय किया गया कि ये भाई और बहनें बाबा सब अलग अलग रहेंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी ईश्वरीय यज्ञ का कारोबार चला, नाबालिग कन्याओं पर, और ट्रिब्यूनल के तरफ से आदेश आया कि इनको वापस घर भेजा जाए। वो फिर से अपने माँ बापों को खुश करके, राजी करके सहमति पत्र लेकर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी धारणा नहीं छोड़ी, ईश्वर के प्रति जो निष्ठा थी और इस जीवन की जो शुद्धता की धारणाएं थी, उन्होंने भूखे रहे दिनों तक परंतु खाया पिया नहीं। आखिर उनके माँ बाप को उन पर राजी हुए कि भाई इनकी लगन तो भगवान से सच्ची है, तो उन्होंने उनको छुट्टी दी और फिर वो लोग वापस यज्ञ में आए। इस प्रकार से फिर 14 साल, बाकी के 12 साल 10 साल बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न कार्य चला, और 1950 में बाबा ने, भगवान ने आदेश दिया कि अब इस सत्संग को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि हमें समग्र विश्व की सेवा करनी है। तो देखो, विश्व की सेवा भारत से करना ही संभव था, पाकिस्तान से करना तो मुश्किल होता। इसलिए एक स्टीमर में अपना आवश्यक सामान लेकर, जरूरी चीजें लेकर, पूरे 350-450 भाई बहनों को लेकर बाबा, मम्मा, और उस समय भी जो मुख्य दादियां निमित्त थी, वे सबको लेकर के भारत आए। कराची से गुजरात का जो ओखा बंदर है, द्वारिका के पास ओखा बंदर है, वहां ये आए, वहां से ट्रेन करके ये माउंट आबू रोड आए। बाबा ने उससे पहले एक छोटी कमिटी को, 3-4 लोगों को भारत भेजा था, अपने गुरु के पास, अहमदाबाद में वो गुरु थे स्वामी गंगेश्वरानंद जी, अभी भी उनका वहां कांकरिया के पास वेद मंदिर है। वे बाबा के पूर्व गुरु थे तो बाबा ने उनके पास भेजा और गुरु जी को कहा कि आप कोई ऐसा स्थान हमें दिखाएं जहां ये 350-400 लोग रह सके। तो गुरु जी ने बताया कि जाओ माउंट आबू, वहां अभी ही राजाओं के बड़े बड़े महल खाली हुए हैं, क्योंकि 1950 में आप जानते हैं भारत को एकीकरण किया गया, तो राजाओं के महल खाली थे। तो सबसे पहले भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी जिसको कहते थे, जहां अभी सनराइज होटल बनी हुई है, वहां ये लोग आए और रहे। यहाँ का हवा पानी सब कुछ अलग, और वहां कितनी प्रॉपर्टी बंगले सब कुछ छोड़कर आए थे, तो उस समय यहां आकर के वो रहे। उसके बाद धौलपुर हाउस में रहे, कोटा हाउस में रहे, जहां अभी राजस्थान सर्किट हाउस है, और लास्ट बाबा ने पोकरान हाउस में ये यज्ञ को स्थानांतरित किया, जिसको अभी पांडव भवन कहा जाता है। वो विद्यालय का ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स जहां स्थायी रूप से रहे और फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाते गए। 1950 मई मास में कराची से भारत में आना हुआ। वो समय विद्यालय की और परीक्षा का समय था, क्योंकि बाबा की प्रॉपर्टी दादी चंद्रमणि जी के पिताजी, दादी शांतामणि जी के पिताजी, दादा राम, जो इन बड़ों बड़ों की प्रॉपर्टी स्वाहा हुई थी, 400 लोगों का 14 वर्षों तक पालना हुई अच्छी तरह से, तो फिर नेचुरली खजाना खुटने लगा। यज्ञ में बेगरी पार्ट आया। बाबा ने दादियों को हिम्मत भरी कि गंगा बहती है, एक जगह नहीं रहती है, आप भी जाओ और ज्ञान गंगा बन बहो, जगह जगह ज्ञान के सेंटर खोलो। और इस प्रकार 1952 में पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। इसी के साथ साथ दादियों के थोड़े बहुत जो मित्र संबंधियों के कांटेक्ट थे, भारत को तो जानते नहीं थे, ना यहाँ की करेंसी को जानते थे, परंतु इन दादियों के मित्र संबंधियों के सहयोग से पंजाब में गए, यूपी में गए, बिहार में गए, बंगाल में गए, बॉम्बे में गए, बेंगलोर में गए, इन सब स्थानों पर सब युवा दादियों को भेजा गया, जो मैंने उद्घाटन के समय विद्यालय के परिचय में थोड़ा बताया था। वही हिस्ट्री के अलौकिक प्रभाव से जो इन्हों में तेज था, ज्ञान था, चरित्र था, शुद्ध संस्कार थे, अच्छे मैनर्स थे, सेवा की भावना थी, इनके बल पर केंद्र खुलते गए और दादियां उन केंद्रों में बैठकर सेवाएं करने लगी। इस प्रकार केंद्र खुलते गए, फिर तो सबका सहयोग मिलने लगा। 1965 में 24 जून को जो मम्मा निमित्त थी, सभी यज्ञ वत्सों की पालना के लिए प्रैक्टिकल यज्ञ को चलाने के लिए निमित्त थी। बाबा बैकबोन बन करके कार्य करते थे, पर प्रैक्टिकल कार्य माताओं बहनों के द्वारा चलता रहा। वो मम्मा ने तब शरीर छोड़ा, मम्मा अव्यक्त हुई। उसके बाद 67 में जो विश्व किशोर भाऊ का फोटो आपने देखा, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा बॉम्बे में, मम्मा ने आबू में शरीर छोड़ा। और 18 जनवरी को पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। यज्ञ के सामने जो समर्पित थे उनके सामने ये सबसे बड़ी परीक्षा थी कि फाउंडर मीडियम ब्रह्मा बाबा ही अव्यक्त हुए, पर जो ज्ञान योग की शक्ति बाबा ने भरी थी, दादियां मजबूत थी, चारों ओर ये वाइब्रेशन थे कि अब देखते हैं इनका सत्संग कैसे चलता है, इनका बाबा गया है, अब ये टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, के वाइब्रेशन थी, बातें थी। पर जो समर्पित थे उनको पाठ पक्का था कि हमें पढ़ाने वाला चलाने वाला शिव बाबा है, ये कोई व्यक्ति पर आधारित संस्था नहीं है, यहाँ सबका बुद्धि योग डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा के सत्य ज्ञान पर हम चलते हैं, परमात्मा के सत्य का विजय होना ही है। तो हिम्मत से बाबा ने मैसेज दिया, मैं आगे बताती हूँ फोटोज। अब केवल ये विभिन्न केंद्रों में बाबा जाते थे, खास करके बॉम्बे भी गए, दिल्ली भी, कानपुर, पटना, कलकत्ता, इन सब स्थानों पर बाबा गए थे। वहां के उस समय के सेवा के ये फोटोज है। ये मम्मा कानपुर गई थी तो वहां उनका कैसे स्वागत हुआ वो फोटो है। आबू में कैसे लोग आते थे केंद्रों के माध्यम से और बाबा कैसे उनको विदाई दे रहे हैं, तो ये बाबा का 18 जनवरी 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। मम्मा ने 65 में, मम्मा के जाने के बाद दीदी मनमोहिनी जी निमित्त बने और उसके कुछ समय के बाद ही दादी प्रकाशमणि जी जो बॉम्बे में केंद्र चलाते थे गामदेवी में, बाबा के अंतिम दिनों में वो यहाँ आए। जब बाबा ने शरीर छोड़ा उनके सामने केवल दादी जी थे, बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया, अपनी अलौकिक शक्तियां दादी को विल की और तब दादी प्रकाशमणि एडमिनिस्ट्रेटर हेड और दादी मनमोहिनी एडिशनल हेड के रूप में प्रथम निमित्त बने। दादी दीदी मनमोहिनी 83 में चले गए तो दादी जानकी जी एडिशनल हेड बने। अब तो वो भी चले गए। ये दादी चंद्रमणि जी बहुत ही हिम्मतवान, साहसी और बहुत ही दृढ़ निश्चय और दृढ़ता की धनी थी। बाबा ने उनको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भेजा। पंजाब की सारी सेवाओं की ये निमित्त बनी। एक अमृतसर से ही उस समय 70 के आसपास 100 से भी अधिक बहनें समर्पित हुई, तो अमृतसर में भी काफी खलबली हो गई। इतनी कन्याएं एक साथ समर्पित हुई, काफी वहां भी भारत में आने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, परंतु ये ईश्वर की करामत, ज्ञान की शक्ति, इसलिए दादी ने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया। उसको बाबा शेरे पंजाब कहते थे। ये कौन है परखिए, ये हैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्री दादी निर्मल शांता जी। बाबा ने उनको नॉर्थ ईस्ट में भेजा, कलकत्ता में आप रहे, और कलकत्ता में रहते हुए बिहार, बंगाल, आसाम, ओडिशा, नेपाल और आसाम के साथ जो 7 स्टेट्स है, सबकी सेवा का कारोबार निर्मल शांता दादी जी ने संभाला। ये है यूनिक पर्सनालिटी, बहुत ही दिव्य आत्मा दादी गुलजार जी, जो दिल्ली में रहे पर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये ट्रांस मैसेंजर के रूप में निमित्त बने। इनके द्वारा फिर लगभग 50 वर्षों तक गाइडेंस मिलता रहा। अभी 2021 11 मार्च उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। पूरा अव्यक्त इनके द्वारा पार्ट चला और पूरा गाइडेंस मिलता रहा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के होते ये यज्ञ चला, इनके अव्यक्त होने के बाद भी इन दादियों ने पूरा बाबा के मार्गदर्शन पर ही कारोबार चलाया। ये दादी मनोहर इंदिरा जी, जिनको बाबा ने हरियाणा में भेजा था, पूरे हरियाणा की सेवा इनके द्वारा शुरू हुई। और इस ज्ञान सरोवर कैंपस की पहली डायरेक्टर मनोहर दादी जी थे, और उन्होंने शुरू में संभाला। 17 नवंबर 2008 में उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद 2009 से निर्मला दीदी इस कैंपस को संभाल रहे। दादी शांतामणि जी, बाबा ने आपको आरंभ में यूपी लखनऊ में भेजा और वहां उन्होंने सेवाएं शुरू की, परंतु 69 ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत जल्दी उनको हेडक्वार्टर में बुलाया। दादी शांतामणि जी शांतिवन कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर थी। दादी रत्न मोहिनी जी, जो अभी हम सबके बीच दादी हैं, वो पांडव भवन कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर थी। बड़ी दादी प्रकाशमणि जी के जाने के बाद वो हेड वहां बने और अभी वो टोटल इस विश्वविद्यालय के हेड है। ये थी वो विशेष आत्मा, ब्रह्मा बाबा की पुत्रवधु दादी ब्रिजेंद्रा, जिन्होंने प्रभु अवतरण का नजारा अपनी आंखों के द्वारा देखा था। बाबा ने उनको बॉम्बे में सेवा में निमित्त बनाया था। दादी गंगे जी, जिनको बाबा जिनको शुरू में बहुत सितम पड़े, परंतु बाबा ने सबसे पहले मनोहर दादी और गंगे दादी को यमुना के कंठे पर भेजा था। फिर वो लोग वहां से मनोहर दादी हरियाणा गए और गंगे दादी को बाबा ने ये प्रयागराज कुंभ मेले में सेवा में भेजा। उस मेले से ही कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने विद्यालय को आमंत्रित किया। फिर दादी गंगे ने यूपी की सेवाएं संभाली। ये भी बहुत विशेष आत्मा, दादी हृदय पुष्पा, दादी चंद्रमणि जी के बड़े बहन। कोई पढ़ाई नहीं, बाबा ने उनको कर्नाटक में भेजा, परंतु उनकी दिव्य स्थिति, योग की स्थिति, भाषा के कारण बात नहीं कर पाते थे, पर उनसे साक्षात्कार बहुत होते थे। कर्नाटक के काफी हैंड्स तैयार किए और अनेकानेक केंद्र वहां खुले। ये तीन दादियां, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार जी का इस यज्ञ को देश विदेश में फैलाने में और जो भाई बहने आते हैं उनको परिपक्व बनाने में मेजर रोल रहा। ये भारत में आने के बाद प्रथम कुमार जो समर्पित हुआ, ब्रह्मा कुमार बना, वो ब्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी। बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही प्रभु के लिए प्यार, आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का इनमें समन्वय देखा। यही वो आत्मा है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान विश्व की सभी आत्माएं समझ सके, ऐसा लिटरेचर उन्होंने लिखा, जो हमारा प्रारंभ का साहित्य है उन्होंने लिखा। वो भी चले गए। अभी वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस विश्वविद्यालय के और जो 69 से ही हेडक्वार्टर में रहे, वो ब्राता निर्वैर जी, बेसिकली पंजाब के, परंतु आप इंडियन नेवी में थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में, बॉम्बे से ज्ञान मिला और वहां से ही आप समर्पित हुए। अभी ये पूरे हेडक्वार्टर और यज्ञ की बातों को दादियों के साथ, दीदियों के साथ संभाल रहे। ये हमारे रमेश भाई शाह बॉम्बे से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शुरू से ही यज्ञ का फाइनेंस, अकाउंट्स एंड लीगल डिपार्टमेंट आपने संभाला। देश विदेश की सेवा प्रचार में आपका बहुत ही अच्छा रोल रहा। ये हैं हमारे ब्राता ब्रिज मोहन जी, जो बेसिकली पंजाब से बाबा के बने, दिल्ली ओआरसी में काफी आपने अपनी सेवाएं दी है, अभी भी दे रहे हैं। अभी आप हेडक्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं और पूरे यज्ञ की सेवा संभालने में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में सेवाएं दे रहे। ये है इसी यज्ञ का इतिहास। हजारों बहने लगी हैं, हजारों भाई बहने आप जैसे हैं, सब कुछ भगवान के डायरेक्शन पर, जो उसने नियम मर्यादा संयम सिखाया, जो सत्य ज्ञान योग सिखाया है, उसी के आधार पर चल रहा है। ओम शांति।